नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी फिर से शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी बजट को बेहतर बनाने के लिए सचिवालय में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कामकाजी महिलाएं, शिक्षक, खिलाड़ी और छात्र शामिल हुए। पालम इलाके में आज सुबह एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग में 9 लोगों की मौत। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। भारत ट्राइब फेस्ट आज से शुरू। इसमें जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 11,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अंतर्गत लंबे समय से लंबित इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सब्सिडी के वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्राथमिकता देने में नाकाम रही, जिसके कारण इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को मिलने वाली सब्सिडी का वितरण नहीं हो पाया। श्री सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने कंपनियों और फार्मों के 3,000 से अधिक स्थापित लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके दस्तावेजों और पात्रता का स्थापन पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि उन लाभार्थियों को लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी वितरित की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग ने सब्सिडी वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, जिससे राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार के आगामी बजट 2026 को लोगों के लिए बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक संवाद कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में कामकाजी महिलाएं, शिक्षक, खिलाड़ी और छात्र शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों के लोगों के सुझाव लिए और ये आश्वासन दिया कि इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और भविष्य के लिए बेहतर अवसरों के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना को कक्षा 12 तक बढ़ाया जाए, जिससे छात्रों को लगातार पोषण मिलता रहे। साथ ही छात्रों ने स्कूलों में नियमित खेल प्रशिक्षण शुरू करने और खेल से जुड़ी सुविधाएं बेहतर बनाने की भी बात कही। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं ने सुझाव दिया कि स्कूलों में क्रच की सुविधा शुरू की जाए। शिक्षकों ने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए AI आधारित प्रशिक्षण शुरू करने और शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं होगा, बल्कि राजधानी के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का पूरा प्लान होगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
दिल्ली के पालम इलाके में आज सुबह एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग में 9 लोगों की मौत हो गई। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग ने बताया कि आज सुबह 7 बजे सूचना मिलने के बाद 31 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। बचाव अभियान के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि घटनास्थल से 12 लोगों को अस्पताल ले जाया गया।
आज सुबह एक फायर इंसिडेंट की कॉल आई, जिसमें फायर हुई है और कुछ लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। साथ के साथ जो फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस है वो भी वहां पे आई। पूरे प्रोसेस में फायर को बुझाया गया। टोटल 12 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 9 लोगों को ब्रॉन डेड डिक्लेयर करा गया अस्पताल ले जाने के बाद, जिसमें 2 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे थे। FSL की टीम और क्राइम टीम हमारी मौके पे है और जो लीगल एक्शन है उसको इनिशिएट करने का।
उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इनमें मृतक वयस्कों के परिजनों को 10 लाख रुपए, मृतक नाबालिगों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत, सहायता और सभी आवश्यक मदद सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने आज हैदरपुर रीडेवलपमेंट क्षेत्र में 93 औद्योगिक यूनिट्स को बंद करने की नोटिस जारी किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि DDPCC की टीमें सक्रिय रूप से गैर अनुपालन और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि जो इकाई वायु प्रदूषण नियमों का अनुल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजेंद्र सिंह सिरसा ने बताया कि राजधानी में अटल कैंटीनों के लिए LPG की कोई कमी नहीं है। श्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि हाल ही में आई रुकावट केवल 2 एजेंसियों तक सीमित थी और जिन्होंने निर्धारित गैर घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी के बजाय वाणिज्यिक कनेक्शनों का उपयोग किया था। उन्होंने बताया कि पर्याप्त LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए कैंटीनों को उचित श्रेणी में स्थानांतरित करने में सहायता दी जा रही है। साथ ही इस संबंध में नोडल अधिकारियों का गठन किया गया है जिनके संपर्क विवरण संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्य शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर निगम द्वारा राजधानी के सभी प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत मंदिर परिसरों, आसपास की सड़कों, गलियों तथा सार्वजनिक स्थलों पर नियमित साफ सफाई, कचरा उठाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। इस संबंध में श्रीमती शर्मा ने सभी जोन के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
श्रीमती शर्मा ने बताया कि विशेष रूप से उन प्रमुख मंदिरों जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं वहां अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इन स्थानों पर मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था, अतिरिक्त डस्टबिन की स्थापना तथा पूजा सामग्री के समुचित निस्तारण के लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालु की सुविधा और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता है। श्रीमती शर्मा ने सभी नागरिकों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामना देते हुए कहा कि वह स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करे और पूजा सामग्री को निर्धारित स्थानों पर ही डाले। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक विकास कुमार से मुलाकात की। श्री संधू ने बताया कि मुलाकात के दौरान शहर में मेट्रो नेटवर्क की प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो स्टेशन से आसपास के इलाकों तक अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उपराज्यपाल ने आज स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक वीरेंद्र के पॉल से मुलाकात कर शहरीकरण की चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी और समयबद्ध समाधानों पर चर्चा की। श्री संधू ने कहा कि वार्ता के दौरान उच्च घनत्व वाले ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज के छात्रों ने आज दिल्ली नगर निगम प्रशासन तथा जन समस्याओं के समाधान की कार्यप्रणाली को समझने के उद्देश्य से निगम के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि युवाओं की भूमिका शहर के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण है। भारत जनजाति महोत्सव 2026 आज राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुआ। महोत्सव में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को प्रदर्शित किया गया। इसका आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा सुंदर नर्सरी में किया जा रहा है। 30 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में देशभर के 78 वन धन विकास केंद्रों के 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे और 300 से अधिक जनजातीय कारीगर शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और तेल शोधक संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यावसायिक LPG का अतिरिक्त 10% आवंटन दिया है।
क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, डोमेस्टिक LPG प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 40%, रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर एडिक्वेट स्टॉक्स पेट्रोल और डीजल के अवेलेबल हैं। नेचुरल गैस के संबंध में PNG और CNG फॉर ट्रांसपोर्ट 100% विदाउट एनी कट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है।
सुश्री शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 12,000 छापे मारे गए और लगभग 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि लगभग 2,500 खुदरा दुकानों और एलपीजी वितरकों के यहां औचक निरीक्षण किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसमें 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास, लघु जल विद्युत विकास योजना, कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
आज 4 बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला है भारत में मेक इन इंडिया, उसके लिए 33,660 करोड़ रुपीस के सैंक्शन से आज कैबिनेट में अप्रूव हुई। दूसरा जो 2023-24 का कॉटन सीजन था उसमें 11,712 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट मिला उसके रीइंबर्समेंट से रिलेटेड मैटर्स आज अप्रूव हुए। चौथा बाराबंकी से बहराई, इसका एक्सेस कंट्रोल्ड 4-लेन हाईवे 6,969 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ और स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम आज अप्रूव हुई।
सरकार ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीटें निशुल्क चयन के लिए उपलब्ध कराई जाए। मंत्रालय ने निर्देश दिया कि एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आसपास की सीटों पर एक साथ बिठाया जाना चाहिए। इस बीच सरकार ने यात्रियों के अधिकारों, विशेषकर विमानों में विलंब होने, इसके रद्द होने और विमान पर सवार होने से रोके जाने के मामलों में पर भी कड़े नियमों का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस महीने की 25 से 31 तारीख तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में वैश्विक और भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए 125 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य दिल्ली को एक वैश्विक सिनेमाई केंद्र के रूप में बढ़ावा देना और सिनेवर्स एक्सपो तथा सिने एक्सचेंज के माध्यम से नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली के राजीव गांधी स्टेडियम में कल से भजन क्लबिंग कार्यक्रम शुरू होगा। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदी नववर्ष के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम भक्ति संगीत और सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत संगम बनेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और पूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण कल कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि कल शालीमार बाग, नरेला, आदर्श नगर, प्रहलाद विहार और रोहिणी के आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पाड़वा, चेटी चंद, नवरोज और साजिबू चेरोबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कामना व्यक्त की कि ये त्यौहार प्रेम और सद्भाव के माध्यम से भारत के विभिन्न समुदायों में एकता को बढ़ावा देंगे और नागरिकों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली लाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 11,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भ्रमण किया। मंत्रालय द्वारा आयोजित इस विशेष यात्रा का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उद्यानों की सुंदरता का अनुभव कराना और उनकी सामाजिक भागीदारी एवं कल्याण को बढ़ावा देना था। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा और धूप खिली रही, वहीं शाम को बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी बजट को बेहतर बनाने के लिए सचिवालय में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कामकाजी महिलाएं, शिक्षक, खिलाड़ी और छात्र शामिल हुए। पालम इलाके में आज सुबह एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग में 9 लोगों की मौत। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। भारत ट्राइब फेस्ट आज से शुरू। इसमें जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 11,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भ्रमण किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।